दिन भर तारीख 18 मार्च दिन शुक्रवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। समलैंगिकता पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले ने दी सफाई, कहा इसका इलाज हो। कांग्रेस ने संघ प्रमुख से मांगा जवाब।
क्या ये आरएसएस की बदलती सोच का प्रमाण है? हम इस बारे में माननीय मोहन भागवत साहब की राय भी जानना चाहेंगे।
राष्ट्रद्रोह के मामले में उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को अंतरिम जमानत, और विवेचना में आज बात होगी टेस्ट क्रिकेट के सबसे दमदार मुकाबले की।
लक्ष्मण ने ग्राउंड के कोई कॉर्नर में ऐसी जगह नहीं थी जहां शॉट्स नहीं खेले, उनको फोर्स कर दिया नेगेटिव बॉलिंग करने के लिए। 7 खिलाड़ी 8 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर लेकर के उन्होंने बॉल करना चालू किया, उसके बावजूद उसने कवर और एक्स्ट्रा कवर में शॉट खेले।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने समलैंगिकों को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने आज कहा है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ये अनैतिक है। इससे जुड़े लोगों को दंड देने की नहीं बल्कि इलाज किए जाने की ज़रूरत है। जबकि कल उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि यौन पसंद निजी और व्यक्तिगत होते हैं, आरएसएस की इस पर कोई राय नहीं है, आरएसएस में सेक्स पर कोई बात नहीं होती है। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को 6-6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि दोनों बिना इजाजत के देश नहीं छोड़ सकते। इन छात्रों ने 23 फरवरी को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने देश छोड़ दिया है, वे अपना इलाज कराने के लिए दुबई चले गए हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर दी है। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वो मुशर्रफ पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटा ले। इसी के बाद मुशर्रफ ने कराची से दुबई की उड़ान भरी। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि उनका देश इस तरह के और परीक्षण करेगा। अमेरिका ने इन परीक्षणों के बाद एक बार फिर उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र में तनाव और न बढ़ाए। जनवरी में उत्तर कोरिया ने अपना 4th परमाणु परीक्षण किया था, तभी से यहाँ तनाव बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मून सैंग युन ने इन मिसाइल परीक्षणों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षण को हमारी सेना बेहद गंभीरता से ले रही है। उत्तर कोरिया का ये मिसाइल परीक्षण सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र काउंसिल के प्रस्ताव पर सीधा हमला है। इससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ये थे दक्षिण कोरिया रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मून सैंग युन। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चाधिकारियों के मुताबिक यमन में सऊदी अरब गठबंधन सेनाओं ने भारी तबाही मचाई है। अधिकारियों ने कहा है कि यमन में बाकी फौजों के हमले में जितने लोग मारे गए हैं उससे दुगने नागरिक सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं के हमले में मारे गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त जेड राड अल हुसैन ने कहा कि सऊदी अरब गठबंधन सेनाओं के हवाई हमलों ने दुकानों, अस्पतालों, स्कूल, फैक्ट्रियों, यहाँ तक कि शादी की पार्टियों तक को निशाना बनाया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि शरणार्थी संकट खत्म करने के लिए तुर्की को कोई मशवरा देने से पहले यूरोपीय संघ इस मामले में पहले खुद अपना रिकॉर्ड देखे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। आज बात सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तात्रेय होसबाले की, जिन्होंने कल समलैंगिकता पर दिए अपने बयान पर आज सफाई पेश की है। कल उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर समाज में अन्य लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने इसे एक मनोवैज्ञानिक मामला बताते हुए इसका इलाज किए जाने की ज़रूरत बताई। उधर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से सफाई मांग रही है। सुनिए अमर शर्मा की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबाले से गुरुवार को एक निजी चैनल आज तक के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कार्यक्रम में समलैंगिकता के विषय पर सवाल किया गया तो तो उनका जवाब था, यौन पसंद निजी और व्यक्तिगत होते हैं, इस पर आरएसएस को सार्वजनिक रूप से अपनी बात क्यों कहनी चाहिए? समलैंगिक, ट्रांसजेंडर या कुछ और होना व्यक्तिगत पसंद का मामला है। आरएसएस की इस पर कोई राय नहीं है, जब तक कि वो सामाजिक, राष्ट्रीय और पारंपरिक लोकाचार को प्रभावित नहीं करता। आरएसएस में सेक्स की व्यक्तिगत पसंद पर कोई बात नहीं होती है और हम इस पर कोई बात करना भी नहीं चाहते हैं। इस तरह के सार्वजनिक मंच पर बात करने की इच्छा रखने वालों में मैं आखिरी होऊंगा। जब तक समाज के दूसरे लोगों की जिंदगी प्रभावित नहीं होती, मैं नहीं समझता कि समलैंगिकता को अपराध माना जाना चाहिए।
ये थे दत्तात्रेय होसबोले के शब्द। लेकिन अगले ही दिन यानी आज उन्होंने इस मुद्दे पर सफाई दी। होसबोले ने सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट कर कहा,
समलैंगिकता अपराध नहीं है, पर यह हमारे समाज में अनैतिक है। इससे जुड़े लोगों को दंड देने की जरूरत नहीं है, पर इसे मनोवैज्ञानिक मामला मानते हुए उनका इलाज किया जाना चाहिए।
ये थे होसबोले के शब्द। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में समलैंगिकता को अप्राकृतिक माना गया है और इसके लिए अधिकतम 10 साल कैद की सजा हो सकती है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने इसमें संशोधन के लिए 2 बार निजी विधेयक लोकसभा में पेश किया, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। योग गुरु रामदेव के मुताबिक समलैंगिकता गलत यौन पसंद है और इसे योग के जरिए ठीक किया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने होसबोले के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और आरएसएस प्रमुख से इस बारे में अपनी राय रखने को कहा है।
दत्तात्रेय होसबोले साहब का जो बयान है आरएसएस की तरफ से, क्या ये आरएसएस की बदलती सोच का प्रमाण है? हम इस बारे में माननीय मोहन भागवत साहब की राय भी जानना चाहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने के खिलाफ दायर याचिका को 5 जजों की बड़ी बेंच को सौंपा है। अब 5 जजों की बेंच को फैसला करना है कि समलैंगिकों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानने वाले 19वीं सदी के कानून को बरकरार रखा जाए या नहीं। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें समलैंगिक सेक्स को अपराध न मानने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था। समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग इस कानून को खत्म करने की पैरवी करते रहे हैं। समलैंगिकता पर दिए गए दत्तात्रेय होसबोले के बयान को लेकर काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर समाज में खुलकर नहीं तो दबी जुबान में ही सही पर चर्चा जरूर होती रही है।
भारत में समलैंगिक समुदाय लंबे समय से अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया भर में भी समलैंगिकों के अधिकारों की बात उठ रही है। ऐसे में आरएसएस के नेता होसबोले को समलैंगिकता पर दिए अपने बयान पर सफाई देने और खासकर ये कहने की क्या जरूरत महसूस हुई कि इसका इलाज होना चाहिए, यही सवाल मैंने किया 5 जन्य पत्रिका के समूह संपादक जगदीश उपासने से।
देखिए, जो कंक्लेव में उनसे सवाल ये पूछा गया था कि संघ का इस पर क्या मत, आरएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया था, उन्होंने कहा कि आरएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू हर एक विषय पे रखना होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि अगर ये स्वतंत्रता अगर कोई ये करता है तो और दूसरों को इससे कोई बाधा नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत एक व्यक्ति अगर शुरू से ही इस बात को साफ तौर पर कह रहा है कि भाई ये मेरी राय है, तो हर एक आदमी की अपनी राय हो सकती है, संगठन से इतर राय भी हो सकती है एक व्यक्ति के नाते, और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।
जी, इसको एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि वहाँ एक प्रगतिशील बयान दिया गया, जाहिर तौर पर संघ के नेता हैं तो संघ से जोड़कर बयान को देखा जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने बयान पे सफाई देते हैं, तो इसको अपनी बात से पलट जाना नहीं कहेंगे?
नहीं, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है, संघ के जो सामान्य वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मीडिया में जो खबरें आती हैं या टीवी पर जो खबरें चलती हैं उससे कई बार उनको भ्रम हो सकता है, पशुपेश में पड़ सकते हैं कि हमारे अधिकारी ने ये क्या कह दिया। तो मुझे लगता है ये उसकी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि उनको बाकी लोगों को क्लैरिटी करने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि संघ में जिस तरह के बदलाव पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं उसलिए उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि संघ कोई बहुत अलग हटके चल रहा है समाज में जो धारा चल रही है उससे। तो ये स्पष्टीकरण मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए है जो देश और दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनको ये बताना जरूरी है कि दत्तात्रेय जी ने जो ये बात कही वो अपने खुद के विचार रखे, संगठन के विचार नहीं, क्योंकि संगठन की तो अभी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है उसकी मीटिंग हो चुकी है। अगर कुछ ऐसा होता तो उस मीटिंग में उस पर जरूर बात होती,
जी, लेकिन अपना जो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये साइकोलॉजिकल केस की तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, इलाज किए जाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि जो बहुत सारे समलैंगिक समुदाय के लोग हैं, एक तरह से उनका हतोत्साहित नहीं करता है उनको बयान, उनका एक तरह से अपमान नहीं है
इस समस्या पर? मतलब मैं अगर पत्रकार हूं तो मेरे हिसाब, मैं भी कई बार ये सोचता हूं कि क्या ये मन की गांठ है, कोई मन की कोई गुत्थी है या कोई शरीर का विकार है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं ना मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूं। लेकिन हर आदमी इस तरह से सोचता है क्योंकि उसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है।
लेकिन अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनके अधिकारों की बात हो रही है, मान्यता देने की बात हो रही है, तो वो सब पे तो सबकी हमारी नजर है ही।
क्या भारतीय समाज इसको स्वीकार करता है? पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि बड़ा जो भारतीय समाज है, कानून से भले ही हम कर दे, संसद में तो विधि मंत्री ने इस बारे में सकारात्मक रूप दिखाया था, लेकिन क्या भारतीय समाज इसको स्वीकार करेगा? हो सकता है आज न करे कल कर ले, या हो सकता है कि महानगरों का या जो पढ़ा लिखा हम जैसे जो लोग हैं उसको मान भी ले कि भाई चलो इसमें समाज का क्या बिगड़ता है। लेकिन क्योंकि भारत में ये बहस का मुद्दा इसीलिए है कि भारत एक पुराना देश और फिर उसमें रीति या रिवाज ये सब चीजें काउंट करती है, तो मुझे लगता है कि ये बहस का मामला है और समाज में इस पर बहस होनी चाहिए।
ये थे जगदीश उपासने, जो संघ के करीब समझी जाने वाली पत्रिका पांचजन्य के समूह संपादक हैं। उधर राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को आज 6-6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई। इस मामले पर पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद है बीबीसी संवाददाता विनीत खरे।
वाकया 9 फरवरी का है, जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ विवादास्पद नारे लगे थे, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। कन्हैया जो स्टूडेंट्स यूनियन के नेता हैं, प्रमुख हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ये हाइडिंग में चले गए थे। उसके थोड़े दिन बाद वापस आए, उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उमर खालिद के बारे में कहा जाता है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया, जहाँ पर विवादास्पद नारे लगे थे। ये जो उमर खालिद और अनिर्बान की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से उन्हें अब जमानत मिली है। इससे पहले जो कन्हैया को जमानत मिली थी, उसका असर बताया जा रहा है। हमारी थोड़ी देर पहले उमर खालिद के पिताजी हैं सैयद कासिम इलियास रसूल, उनसे बात हुई और उन्होंने बताया,
हम संतुष्ट हैं कोर्ट के फैसले से और जाहिर बात है कि कोई खास इसमें कंडीशंस नहीं है। 25,000 रुपए की हल्के पर जो है जमानत दी गई है दोनों को, और इसके अलावा जो है ये जमानत इंटरिम है 6 महीने की।
ये थे उमर खालिद के पिता, जो अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
जम्मू कश्मीर में 90 के दशक के वो दिन और रात कैसे रहे होंगे जब चारों ओर निराशा और आशंका के बादल छाए थे। खासतौर पर महिलाओं के लिए ये वो दिन थे जब पुराने रिश्ते और दोस्तियां शक और आशंका के अंधेरे में खोने लगी थीं। कवित्री क्षमा कौल का कहना है कि तब एक लेखिका के रूप में उनकी पहचान धूमिल पड़ गई थी। प्रस्तुत है इनका भी कश्मीर श्रृंखला की आखिरी कड़ी, प्रस्तुति क्षमा कौल की।
इतने बरस पहले उस ठंडी रात के बाद निरंतर दिन में और रात के अंधेरे में जुलूस निकलने लगे और पाकिस्तान के नारे लगने लगे थे। मैं एक दफ्तर में काम किया करती थी जहां लोग हमें दहशत से भरने लगे थे। हम आशंका लिए हुए सुबह घर से निकलते और आशंकाओं में डूबे हुए शाम को वापस लौटते। शासन प्रशासन नाम का कोई तंत्र जीवित न था जो हम स्त्रियों के प्रति उत्तरदायी होता। मेरे साथ लेखिका होने का विशेषण लगा हुआ था, पर मैं मात्र एक स्त्री ही थी। स्त्री की सबसे नाजुक और रक्षणीय चीज़ उसकी देह होती है। मार डालते तो मुक्ति हो जाती, मगर स्त्रियों के लिए उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा था। स्त्री को देह के स्तर पर जलील करने का उनका कार्यक्रम था और वो काम शुरू हो चुका था। स्त्री सिर्फ स्त्री थी, एक देह। उन्होंने ऐसा सोचती रही कि शायद कोई मानवीयता हमें बचाए, ये आशा रही, पर हर तरफ सन्नाटा था। ऐसे में स्त्री होना बहुत बहुत खतरनाक था। मैं सोचती हम जीते तो थे उत्पीड़न, अपमान और संतरास का जीवन, मगर फिर भी जैसे तैसे जी लेते थे। पर यह हालत हो जाएगी इसकी कल्पना ही न की थी हम। काम दाम कुछ न करते, सिर्फ इस भयावह तांडव के गीत गाते हुए रक्त रंजित नृत्य करते। हर गली चौराहे और सड़क पर लोग खेल खेल में इकट्ठा हो जाते और जुलूस निकालते और अपने खूनी संकल्पों के नारे लगाते। हमारी आशा केंद्र सरकार पर टिकी थी, पर उसे भी लकवा मार गया था। आतंकी सुरक्षा बलों और सेना का भयानक ढंग से प्राणहानि कर रहे थे। हथियार का प्रयोग सिर्फ जहादी कर रहा था, जबकि राज्य का आदेश था कि सुरक्षा बल अर्थात सेना संयम बरते। सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र का भयावह ढंग से अर्थ परिवर्तन हो रहा था, यानी सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म न था, कम्युनलिज्म हो गया था, और लोकतंत्र लोकतंत्र न था, तानाशाही हो गई थी वो। हम ये भी समझ गए कि हम अकेले अजनबी और लावारिस लोग हैं और हमें निष्कासित किया जा रहा है। हम मात्र 5% और भी निहत्थे और हर तरफ से आरक्षित मूल्य आधारित जीवन के गहन विश्वासी थे। ऐसे में मेरी सब कविताएं, सब कहानियां और आलेख, कोई भी साहित्य किसी काम का न था। अपने जैसे उन तमाम दूसरे लोगों की तरह ही मुझे अपना और अपने परिवार का वजूद बचाना था, पर उसके लिए हमें हमेशा के लिए अपना घर, धरती और समाज छोड़ना था। अपनी जड़ें छोड़ी थी, हमारा वजूद बच गया ऐसे तो, पर क्या हमारा वजूद बच गया।
इनका भी कश्मीर श्रृंखला के तहत आपने 5 कश्मीरी पंडितों की आप बीती सुनी। सोमवार यानी 21 मार्च से आप सुनेंगे कश्मीर से हाल में लौटे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की विशेष रेडियो रिपोर्टें। और अब विवेचना, जिसमें आज बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले की। पेश कर रहे हैं रेहान फजल।
उस ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर अजेय कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। लगातार 16 टेस्ट जीतने के बाद वो कोलकाता पहुंचे थे। एक हफ्ते पहले ही उन्होंने मुंबई में भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। ईडन गार्डन में टॉस जीतने के बाद जब माइकल स्लेटर ने जहीर खां की गेंद पर स्टांस लिया तो स्टेडियम में बैठे एक दर्शक ने बंगाली में कहा, इटाओ जबे, यानी हम ये मैच भी हारेंगे। स्लेटर, हेडन और लैंगर सब ने रन बनाए और पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 291 रनों का स्कोर खड़ा किया। लेकिन दिन रहा कमबैक कर रहे हरभजन सिंह के नाम, जिन्होंने 3 लगातार गेंदों पर पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट और शेन वॉन को पवेलियन भेजकर टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से पहली हैट्रिक ली। उस मैच में अंपायरिंग कर रहे श्याम कुमार बंसल याद करते हैं।
हरभजन सिंह गेंद कर रहे थे और मेरी एंड की तरफ से वो गेंद कर रहे थे। शुरू में जब उन्होंने 1 या 2 ओवर फेंके तो वो उस तरह की गेंद नहीं कर पाए जैसी कंट्रोल की हुई गेंद होनी चाहिए थी। रिकी पॉन्टिंग बैटिंग कर रहे थे, मैथ्यू हेडन आमने सामने दोनों खेल रहे थे और 2-3-4 चौके उनके ऊपर लग भी चुके थे तो वो थोड़े से डिस्टर्ब थे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन खुदा की कुदरत होती है, एक गेंद उन्होंने इतना अच्छा गेंद किया, आउटसाइड दी ऑफ स्टिक गेंद टर्न हुआ, रिकी पॉन्टिंग सफल हुए। जैसे वो सफल हुए सामने खड़े हो गए और उनके सामने टांग के ऊपर गेंद लगी, देयर वॉज नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू गिव हिम आउट LBW। उसके बाद में गिलक्रिस्ट आए अगली बॉल के ऊपर, वो LBW हो गया और उसके बाद में शेन वॉर्न आए। शेन वॉर्न खेलने लगे तो जो गेंद उन्होंने खेली शॉर्ट लेग, उसके ऊपर एस रमेश खड़ा हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने गेंद खेली तो गेंद खेलते वो गेंद निकल करके एस रमेश के पास चली गई। मैं वहाँ पर उस समय ब्लाइंड हो गया, मेरे को नहीं दिखाई दिया कि ये कैच क्लियर हो गया नहीं हो गया है, तो मेरे को वो कैच रेफर करना पड़ा थर्ड अंपायर को। थर्ड अंपायर ने वहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया कि यस ही इज आउट।
No Indian bowler has ever taken a test hat trick. Here we go. Can he do it? Oh, he's got him. Has he got him? Has he got him? He's going over to the square leg. The celebration's on. He wants a replay. He wants a replay. We don't need the light. Yeah, he's got
दूसरे दिन स्टीव वॉ और जेसन गिलेस्पी जम गए और स्कोर 445 रनों तक ले गए। भारतीय टीम की मैग्रा, गिलेस्पी, कास्प्रोविक्स और वॉन के सामने एक न चली और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। ईडन गार्डन पर बैठे उसी दर्शक के मुंह से निकला एटाओ गैलो, यानी ये मैच भी गया। थोड़ी बहुत इज्जत बचाई वीवीएस लक्ष्मण की 59 रनों की पारी ने। 171 रनों पर भारत को आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन किया और भारतीय टीम के मैनेजर चेतन चौहान के मन में एक नई रणनीति ने जन्म लिया।
मुझे याद है कि वीवीएस लक्ष्मण नीचे बैटिंग कर रहे थे और वो 6 नंबर पर और वो नॉट आउट है और हम लोग बहुत कम रन आए, तो मैं ऐसे ही गया, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और 3 नंबर कभी बैटिंग की है आपने और कर सकते हो, तो उनका मैंने पूरी जिंदगी में 3 नंबर पर ही बैटिंग की है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 नंबर बैटिंग करना। तो फिर मैंने जाके जॉन राइट से पूछा कि मैंने कहा कि ये बहुत अच्छे फॉर्म में है और अभी नॉट आउट रहा है, इसी को इनिंग आगे बढ़ाने दीजिएगा, इसको आप प्रमोट कर दीजिएगा। आप प्रश्न ये उठा कि राहुल द्रविड़ 3 नंबर खेलते थे उनको कौन बोलेगा, तो मैंने कहा ये काम जो है फिर मेरे ऊपर सौंपा गया। तो मैंने राहुल से ऐसे जाके पूछा, मैंने कहा राहुल प्लीज थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है अगर आप नीचे बैटिंग करें? तो राहुल वॉज वेरी नाइस, राहुल द्रविड़ एब्सोल्यूट जेंटलमैन, उसने कहा टीम के हित में जो करना चाहते हैं आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इस प्रकार से वीवीएस लक्ष्मण 3 नंबर बैटिंग करने गए।
बाद में भारतीय टीम के कोच जॉन राइट ने अपनी किताब इंडियन समर्स में लिखा,
मुझे याद था यन चैपल तर्क दिया करते थे कि आपका नंबर 3 स्ट्रोक प्लेयर होना चाहिए जो विपक्ष के खेमे में घुसकर हमला करे और किसी भी खराब गेंद को बख्शे नहीं। राहुल द्रविड़ हमारे नियमित वन डाउन बल्लेबाज थे लेकिन वो धीमा खेलते थे, इसलिए जब लक्ष्मण 59 रनों पर आउट होकर लौटे और हमें फॉलो ऑन मिला, मैंने लक्ष्मण से कहा लैक्स अपने पैड मत उतारो, तुम इस पारी में नंबर 3 पर जाओगे।
शुक्र ये रहा कि शिव सुंदर दास और रमेश ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े जिससे लक्ष्मण को थोड़ा आराम का मौका मिल गया। रमेश के आउट होने के बाद लक्ष्मण क्रीज पर उतरे और पहली गेंद से ही उन्होंने गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेना शुरू किया।
That's a lovely shot. Caress through the offside field. The Bengalis are loving it. Straight down the ground. That's 4 as well. VVS Laxman is picking up from where he left.
दास और तेंदुलकर उनका ज्यादा साथ नहीं दे पाए। गांगुली थोड़ा जमे लेकिन 48 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर वो भी आउट हो गए। नंबर 6 पर द्रविड़ उतरे और उतरते ही पॉन्टिंग ने उन्हें स्लेच किया, नंबर 3 से नंबर 6 और नंबर 6 से टीम से बाहर। द्रविड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने एक छोर संभाल लिया। तब तक लक्ष्मण अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने लगे थे।
लक्ष्मण ने ग्राउंड के कोई कॉर्नर में ऐसी जगह नहीं थी जहां शॉट्स नहीं खेले, उनको फोर्स कर दिया नेगेटिव बॉलिंग करने के लिए। 7 खिलाड़ी 8 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर लेकर के उन्होंने बॉल करना चालू किया, उसके बावजूद उसने कवर और एक्स्ट्रा कवर में शॉट खेले। आप सोच सकते हैं कि बाहर निकल करके कवर और एक्स्ट्रा कवर के अंदर शॉट खेलना छोटी मोटी बात नहीं होती, गजब खेला। गिलेस्पी को उसने एक सूरत के अंदर, मैं आपको ठीक बताता हूँ, उस समय ऐसा कर दिया कि वो गेंद कहाँ करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गेंद कहाँ करूँ। शेन वॉन को लेग ब्रेक राउंड दी स्टंप आकर के लेग ब्रेक को गेंद कर रहे थे, उनको कवर और एक्स्ट्रा कवर के अंदर वो शॉट मार रहे थे। तो उस दिन जो वीवीएस लक्ष्मण खेले हैं, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी बैट्समैन वो बैटिंग नहीं कर सकता था जो उन्होंने बैटिंग की।
That brings up his second half century in a day. India forced to follow on. Laxman the shining light this morning. And he has held the torch again this afternoon.
Lakshman ne pehle shatak pura kiya, phir dohra shatak, aur phir Gavaskar ka 236 rano ka record toda.
So he becomes the highest scorer for India in a test match. 237 not out. 5-15 for 4 the score.
And I think one of the interesting aspects of this score and the one made by Sunil Gavaskar is that both of them were played against the best attacks of their time.
Chauthe din Lakshman aur Dravid pure din khelte rahe. Dravid ne bhi shatak lagaya.
He's got it through. That's a fantastic century. Rahul Dravid
has made his first century against Australia. It's his 9th test match 100, his 4th in India.
दिन समाप्त होते होते द्रविड की पिंडली में क्रैम्प्स होने लगे थे, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। भारतीय टीम के फिजियो एंड्रयू लीपस ने बाद में लिखा,
मुझे याद है कि जैसे ही द्रविड को क्रैम्प्स शुरू हुए, जॉन राइट मुझ पर चिल्लाए, द्रविड को ठीक करो। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि द्रविड पिच पर बने रहें और रिटायर्ड हर्ट न हो। क्रैम्प्स का तुरंत कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ मनोवैज्ञानिक इलाज ही किया जा सकता है। मैंने मैदान पर ही द्रविड को लाल रंग की विटामिन बी की गोलियां दी और कहा, इनसे तुम्हारा दर्द जाता रहेगा। राहुल ने मुझ पर विश्वास किया और मैदान पर इस उम्मीद में डटे रहे कि गोली अपना रंग दिखाएगी। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे झूठ ने असर दिखाया, राहुल के जीवट ने उन्हें वहां डटे रहने की क्षमता दी।
जब चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौटे तो वो बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। जॉन राइट ने अपनी किताब इंडियन समर्स में लिखा,
द्रविड़ डिहाइड्रेशन के शिकार थे। उस जमाने में गर्दन को ठंडा रखने वाले रुमालों का चलन नहीं हुआ था, इसलिए हम तौलियों को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करते थे और उन्हें बर्फ में डुबोकर गर्दन पर लगाने के लिए भेज देते थे। जब दिन का खेल खत्म होने के बाद ये दोनों पवेलियन लौटे तो आधा दर्जन डॉक्टर उन पर काम करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मण को खाने की मेज पर लिटाया गया और द्रविड़ को फिजियो की मेज पर, और दोनों को तुरंत ड्रिप चढ़ाई गई।
अगले दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 75 ओवरों में 384 रन बनाने की चुनौती दी। चाय तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 161 रन बना लिए थे और मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था, तभी तेंदुलकर ने अपना कमाल दिखाया।
सचिन तेंदुलकर की एक ब्यूटी है, मुझे मौका मिला है उनको बहुत सारे टेस्ट मैच कराने का। उनकी बहुत अच्छी ब्यूटी, वो लेग ब्रेक के साथ ऑफ ब्रेक बहुत अच्छी डालते हैं और कंट्रोल के साथ डालते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड बैट्समैन आए तो उन्होंने ऑफ ब्रेक करी, जब उनके लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए तो उनके लिए लेग ब्रेक करी। कहने का मतलब उन्होंने दोनों तरफ से इस तरह से बॉलिंग करी कि अगर कोई भी बॉल मिस होगी और टांग के ऊपर लगती है तो गुंजाइश ही नहीं बचेगी LBW ना होने की। शेन वॉर्न ने उनकी गेंद को लेफ्ट कर दिया ये समझ करके ये लेग ब्रेक है, बाहर जाएगी, गेंद अंदर आई और LBW।
मैच भारत की गिरफ्त में तब आया जब हरभजन ने एक बार फिर पॉन्टिंग को सिफर पर दास के हाथों कैच करा दिया।
And again, has he hit it? He has. So the tentative sweep shot, he's got his second wicket in the over. And Ricky Ponting played it. Non-fluent sweep shot. And then he's paid the penalty of reaching for the ball and trying to paddle it.
अंतिम सत्र में ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरे और जब हरभजन ने मैग्रा को LBW आउट किया, भारत ने असंभव को संभव कर
दिखाया।
सच है कि जहां पर सारे बैठे हुए थे डेल नेक ड्रेसिंग रूम में, अपनी अपनी कुर्सी पे, अपने अपने चेयर पे, जिस तरह खड़े हुए थे कि इस तरह बैठे हुए थे, सारे उसी तरह ही खड़े रहे, उसी तरह ही बैठे रहे, उसी जगह ही बैठे रहे, क्योंकि जिस तरह की साझेदारी है, जिस तरह की बल्लेबाजी धीरे धीरे होती गई, जिस तरह का कॉन्फिडेंस आता गया जब रन बटोरते गए लक्ष्मण और द्रविड़, तो एक वो बयां नहीं किया जा सकता कितनी खुशी का माहौल और खुशी की लहर थी।
ये थे उस भारतीय टीम के विकेट कीपर नयन मोंगिया। ये संभवतः टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा टेस्ट मैच था जब किसी टीम ने फॉलो ऑन होने के बाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को हराया था। ईडन गार्डन के दर्शक तो हतप्रभ थे ही, टेलीविजन पर मैच देख रहे करोड़ों लोगों की आंखों में भी आंसू थे। ये भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम क्षण था। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और अब कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
BBC समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने समलैंगिकों को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने आज कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, लेकिन इससे जुड़े लोगों को इलाज किए जाने की जरूरत है। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को 6-6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चाधिकारियों के मुताबिक यमन में सऊदी अरब गठबंधन सेनाओं ने भारी तबाही मचाई है। BBC समाचार।
तो दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगली मुलाकात घटना चक्र में आपसे होगी। अभी अनुमति दें, नमस्कार।